नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सिक्किम एक तरफा जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीषण गर्मी और चक्रवात सहित सात विषयों पर बैठकें, भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता के रूप में 90 टन स्वदेश निर्मित दवा सामग्री भेजी, मौसम विभाग ने कहा देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिन तेज वर्षा जारी रहेगी, और अमेरिका के डलास में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से पराजित किया। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव की मतगणना के ज्यादातर परिणाम मिल गए हैं। परिणाम और रुझानों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है। सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की एकतरफा जीत हुई है। अरुणाचल में 46 सीटों के परिणाम मिल गए हैं, 34 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए हैं, 5 सीट नेशनल पीपल्स पार्टी के खाते में गई है। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2, एनसीपी को 2 और निर्दलीय उम्मीदवार को 3 सीटें मिली हैं। 60 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा 10 सीटें निर्विरोध जीत गई थी। चुनाव जीतने वाले प्रमुख भाजपा नेताओं में शामिल हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री नॉन्ग एरिंग, महेश चाई, ताई निकियो, होमचुन गांगडम, वांगलिंग लोवाडोंगो, सेरिंग लामू और चक्ता ओबो। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के चुनाव जीतने वाले नेताओं में शामिल हैं नामके शेरिंग, पेसी जिलेन, ओनी पालियांग और थांगवांग वांगहाम। 50 सीटों में से शेष 5 के रुझान मिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1, कांग्रेस 1। सिक्किम में 27 सीटों के परिणाम भी मिल गए हैं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 26 सीटें जीत ली हैं और 5 पर बढ़त बनाए हुए है। 1 सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिली है। राज्य में 32 सीटों पर मतदान हुआ था।
32 संसदीय सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना में 13 सीटों पर जीत और 18 सीटों पर बढ़त के साथ सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी टर्म के लिए अपनी सरकार बरकरार रखने जा रही है। भाजपा जिसने इस क्षेत्रीय पार्टी से नाता तोड़कर 10 मौजूदा विधायकों के दम पर अकेले राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो अभी तक अपना खाता खोलने की स्थिति में नहीं है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट SDF भी सिर्फ एक सीट पर आगे चल रही है। इसके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग उन दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। नवगठित सिटीजन एक्शन पार्टी CAP भी इस बार अपना चुनावी खाता नहीं खोल रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए गैंगटोक से इबोमचा शर्मा।
इन विधानसभाओं का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे। लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले निजी टेलीविजन चैनल और अन्य एजेंसियों ने मतदान पश्चात सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। अधिकतर ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिलने की बात कही है। इन परिणामों के अनुसार 545 सदस्यों वाली लोकसभा में राजग को 2/3 बहुमत मिल सकता है। चुनाव विशेषज्ञों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के 350 से अधिक सीटें जीतने का अनुमान व्यक्त किया है। विपक्षी INDI गठबंधन को 125 से 150 तक सीट मिल सकती है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बारे में कई प्राइवेट टीवी चैनलों और अन्य एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े खारिज कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी है। उन्होंने दोहराया कि INDI गठबंधन को 295 सीट मिलेंगी।
इंडिया जनबंधन को मिनिमम 295 सीटें मिलेंगे। हमारे सारे पार्टियों के नेता मिले, कल राज्यवार स्टेट वाइज उन्होंने विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जनता हमारे साथ है। 4 तारीख को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा।
इस बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है और पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है।
कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में अभी मृत्यु शैया पर दिख रही है। रिजल्ट के बाद देश की राजनीति में परिवारवाद, अहंकार, कुंठित मानसिकता से भ्रष्टाचार से काम करने वाले कांग्रेस गठबंधन एग्जिट होने वाला है और 2024 का लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक्सीलेटर पर है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा पार्टी के नेताओं ने आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एक बैठक की। बैठक में पार्टी की मतगणना पूर्व की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार, पार्टी नेता और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में कल 62.36% मतदान हुआ। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 57 लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले गए। इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीट, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल हैं। कल ही हिमाचल प्रदेश में 6 सीट और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में 1-1 सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव भी सम्पन्न हुए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। लोकसभा चुनाव, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव तथा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना मंगलवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतगणना के रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध होंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए राज्यों को केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराए हैं। आयोग ने यह निर्णय राज्यों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के आकलन के आधार पर लिया। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मतगणना के बाद 15 दिनों के लिए सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024 देश का पहला और सबसे विश्वसनीय प्रसारक आपके लिए ला रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी परिणामों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम।
4 जून सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतगणना के पल पल की खबर।
जानिए कौन है आगे कौन पीछे,
हर सीट से सटीक जानकारी, कौन हारा और किसने बाजी मारी,
देश की करोड़ों जनता का क्या है निर्णय।
आकाशवाणी गोल्ड और अन्य आकाशवाणी चैनलों पर सुनिए लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न मुद्दों को लेकर 7 बैठकें कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पहली बैठक पूर्वोत्तर राज्यों में चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए होनी है। एक अन्य बैठक देश में भीषण गर्मी की स्थिति की समीक्षा के लिए होगी। श्री मोदी विश्व पर्यावरण दिवस व्यापक स्तर पर मनाए जाने की तैयारियों की समीक्षा के लिए भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नई सरकार के 100 दिन के कार्यक्रम की कार्यसूची की समीक्षा के लिए भी एक बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज चक्रवात रेमल के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता के रूप में दवा बनाने में काम आने वाली 9 सामग्रियों की 90 टन की खेप भेजी है। इसे गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से रवाना किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सहायता एक प्रमुख दवा आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भारत की पहचान को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि यह सहायता भारत क्यूबा संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली सहित पश्चिमोत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। विभाग के अनुसार पश्चिमोत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में तथा उड़ीसा में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आरके जनामणि ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली सहित पश्चिमोत्तर भारत में तापमान में गिरावट होगी।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इस जगह में आज और कल हीट वेव रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कम होगा और हम लोग थोड़ा थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म का भी आइसोलेटेड आज वार्निंग दिए हैं। और जो मेजर चेंजेस होगा वो 4th और 5th को होगा, क्योंकि WD आ रहा है अराउंड 5th ऑफ जून एंड उसमें ज्यादा कम होगा।
मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में 4 से 6 जून के बीच गरज और बिजली के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। अगले 3-4 दिन तक देश के पूर्वोत्तर हिस्से और दक्षिण के तटवर्ती इलाकों में तेज वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय से लगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले 4 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। उड़ीसा के पुरी में पटाखों में आग लगने से झुलसे 3 और लोगों की आज मौत हो गई। इसके साथ ही इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। एक रिपोर्ट।
बुधवार की रात भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखों में आग लगने से कम 30 लोग घायल हो गए थे। 19 घायलों का इलाज पुरी, भुवनेश्वर और कटक के अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के निकटतम परिजन के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में आज तड़के लुधियाना अम्बाला मुख्य रेल मार्ग पर दो मालगाड़ियां टकरा गईं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे 51 रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है और 7 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं।
रोपड़ जाने वाली एक मालगाड़ी नए सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन पर खड़ी थी, जब एक अन्य मालगाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। इससे मालगाड़ी का इंजन साथ वाली पटरी पर पलट गया और ठीक उसी समय कोलकाता से जम्मू तवी जा रही ग्रीष्मकालीन स्पेशल यात्री गाड़ी रेल लाइन से गुजर रही थी, लेकिन उसकी गति धीमी होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि मालगाड़ी के दो ड्राइवर घायल हो गए हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को पटियाला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेल लाइन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और अधिकारी लाइन की मुरम्मत युद्ध स्तर पर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
तेलंगाना आज अपना 10वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्यवासियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश के विकास में तेलंगाना के योगदान पर हर भारतीय को गर्व है। श्री मोदी ने कहा कि तेलंगाना समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति वाला राज्य है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर राज्यगान जय जय हे तेलंगाना जारी किया गया। श्री रेड्डी ने तेलंगाना को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी पक्षों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के शिवपुर में नौका दुर्घटना में बच्चों सहित कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ने इस हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में T20 क्रिकेट विश्व कप आज से अमरीका में शुरू हो गया है। डलास में पहले मैच में अमरीका ने कनाडा को 7 विकेट से हरा दिया। अमरीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कनाडा ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 194 रन बनाए। जवाब में अमरीका ने 17 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 197 रन बनाकर जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच भारतीय समयानुसार आज रात 8 बजे वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच होगा। भारत ने कल रात अभ्यास मैच में बांग्लादेश को 7 रन से हरा दिया था। भारत अपना पहला मैच बुधवार को आयरलैंड से खेलेगा। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 5वें दौर में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी अमरीका के फैबियानो कारुआना को हराकर विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रज्ञानंद 8.5 अंकों के साथ अब प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर हैं। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में आर वैशाली ने चीन की टिंकी लई को हराकर 10 अंकों की बढ़त बनाई हुई है। भारतीय दल ने कल एडिनबर्ग में यूएस किड्स गोल्फ यूरोपियन चैंपियनशिप में 3 जीत और अन्य शीर्ष 5 में जगह बनाई। 3 विजेताओं में 13 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में अनन्या सूद, 7 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों में निहाल चीमा और 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों में मान्यवीर भादू शामिल हैं। इसके अलावा 10 वर्ष की आयु वर्ग के लड़कों में सौरभ सिंह तलवार 5वें स्थान पर रहे, जबकि 11 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में उस्विनी सारवस्त उप विजेता रहीं। 12 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में नैना कपूर 4थे स्थान पर रहीं। 13 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में कुंतास कौर संधु 3रे और 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों में कृति पारेख 4थे स्थान पर रहीं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में कल 57 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड हुई। इसमें 6 महिला प्रशिक्षुओं सहित कुल 50 सहायक कमांडेंट शामिल हुए। असिस्टेंट कमांडेंट अंकुर प्रसाद को सर्वश्रेष्ठ अधिकारी चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बरकरार। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सिक्किम में एक तरफा जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भीषण गर्मी और चक्रवात सहित 7 विषयों पर बैठकें। भारत ने क्यूबा को मानवीय सहायता के रूप में 90 टन स्वदेश निर्मित दवा सामग्री भेजी। मौसम विभाग ने कहा देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में अगले 3 से 4 दिन तेज वर्षा जारी रहेगी। और अमरीका के डलास में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मुकाबले में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।